ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में सहभागी होने के लिए भाद्र 14 गते जाएंगे चीन भ्रमण पर। दौरे के दौरान लीपू लेख लिम्पिया धुरा सीमा मुद्दे पर चर्चा होने की सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा जानकारी। सरकार ने सोशल मीडिया को 7 दिनों के भीतर पंजीकरण करने का आह्वान करने का किया निर्णय। निजामती विधेयक में सह सचिव पद के लिए 10% खुला प्रतिस्पर्धा रखने की बात पर राष्ट्रीय सभा विधायन व्यवस्था स्थापन समिति में बनी सहमति। और दक्षिण कोरिया में क्लासरूम में फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बैन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के राष्ट्रपति सी जिनफिंग के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेपाली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए चीन की यात्रा पर जाने की कार्यसूची सार्वजनिक हुई है। प्रधानमंत्री ओली उक्त शिखर सम्मेलन तथा चीन के जनयुद्ध के माध्यम से जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेने के लिए भाद्र 14 गते को चीन के लिए प्रस्थान करेंगे। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित की गई है। प्रधानमंत्री ओली चीन के राष्ट्रपति सी जिनफिंग के साथ तियानजिन में वार्ता करेंगे। वो 1 सितंबर को तियानजिन में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ओली शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे कुछ विश्व नेताओं के साथ भी वार्ता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ओली 2 सितंबर को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ओली 3 सितंबर को बीजिंग में आयोजित जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ स्मृति कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ओली 2 सितंबर को स्वदेश लौटेंगे। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन यात्रा के दौरान होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में नेपाल की लीपू लेख लिम्पिया धुरा सीमा समस्या पर भी चर्चा होगी। आज सिंहदरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने पत्रकारों की जिज्ञासा के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री की भाद्र 14 गते से शुरू होने वाली चीन यात्रा के दौरान लीपू लेख लिम्पिया धुरा सीमा समस्या पर भी बातचीत होगी। संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से अलग अलग मुलाकातों का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इन मुलाकातों में नेपाल के लीपू लेख दर्रे के उपयोग को लेकर चीन और भारत के बीच हुई सहमति का विरोध करते हुए अपनी बात रखने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच भाद्र 9 गते को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सोशल मीडिया संचालकों को जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए 7 दिनों के भीतर समय सीमा निर्धारित करते हुए पंजीकरण के लिए सार्वजनिक आह्वान करने का निर्णय किया गया है। संचार मंत्री गुरुंग ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संचार मंत्रालय में पंजीकरण या पंजीकरण के लिए न आने वाले सोशल मीडिया को क्रमशः नेपाल में निष्क्रिय कर दिया जाएगा और केवल पंजीकरण होने पर ही ऐसे सोशल मीडिया पुनः सक्रिय किए जाएंगे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में नेपाल सरकार द्वारा घोषित विभिन्न 20 औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि को राष्ट्रीय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाएं निर्धारित करने का निर्णय किया गया है। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री गुरुंग ने यह भी जानकारी दी कि बैठक में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय और उसके अधीन स्थल निकायों के संगठन और प्रबंधन को सर्वेक्षण करने के लिए पूर्व स्वीकृति प्रदान करने, नेपाल लेखा परीक्षण सेवा के समूहीकरण के तहत राजपत्र विशिष्ट श्रेणी के उपमहालेखा परीक्षक के पद पर इंद्र प्रसाद आचार्य का स्थानांतरण करने और राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग के सचिव भरत मणि सुवेदी की स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत करने जैसे निर्णय भी लिए गए हैं। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत विधान व्यवस्थापन समिति ने संघीय निजामती सेवा विधेयक में सह सचिव स्तर पर 10% खुली प्रतियोगिता रखने पर सहमति जताई है। बैठक में संघीय निजामती सेवा विधेयक पर धारावार चर्चा के दौरान आज संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय द्वारा विधेयक में प्रस्तावित सह सचिव स्तर पर 10% खुली प्रतियोगिता रखने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित विधेयक की रिपोर्ट में सह सचिव पद पर खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था हटाकर 15% अंतर स्तर और 85% स्थानांतर द्वारा पद भरने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि सहसचिव पद के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु कितने वर्षों का अनुभव आवश्यक होगा, ये विषय बैठक में निर्णित नहीं हो सका है। समिति ने अनुबंध पर रखे गए कर्मचारियों के प्रबंधन और नायब सूबा पद पर खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था रखने के विषय पर अध्ययन कर समिति में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश मंत्रालय को दिया है। प्रतिनिधि सभा द्वारा नायब सूबा पद पर भी खुली प्रतियोगिता बंद करने का प्रावधान करते हुए विधेयक पारित किया गया था। राष्ट्रीय सभा के विधान व्यवस्थापन समिति के अधिकांश सदस्यों और संशोधन प्रस्तावक सांसदों द्वारा नायब सूबा पद पर भी खुली प्रतियोगिता रखने के पक्ष में जोर दिया जा रहा है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित विधेयक की रिपोर्ट में शामिल उन मुद्दों पर सहमति बना रही है जिन पर सहमति संभव है और शेष मुद्दों पर आगे चर्चा जारी रहेगी। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने कहा है कि संवैधानिक पीठ गठित करने में कोई विवाद या मतभेद नहीं था। आज प्रधान न्यायाधीश राउत के साथ वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधानमल, डॉ नहकुल सुवेदी, तिल प्रसाद श्रेष्ठ और विनोद शर्मा की पीठ गठित की गई है। प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए संवैधानिक पीठ का गठन किया है। सर्वोच्च अदालत की पूर्ण बैठक फुल कोर्ट में एक वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा के दौरान संवैधानिक पीठ को व्यवस्थित बनाने के विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन उनके अनुसार कोई विवाद नहीं हुआ था। बीच में कुछ समय के लिए रुकी हुई संवैधानिक पीठ आज फिर से संचालन में आ गई है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने दावा किया है कि पार्टी के प्रति जनता का भरोसा फिर से बढ़ रहा है। करनाली प्रदेश में आज हुई पूर्ण बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि पार्टी के भीतर द्वंद्व पैदा न होने देने, गुटबंदी, अराजकता और अनुशासनहीनता को समाप्त करते हुए पार्टी को मजबूत और एकजुट बनाने का संकल्प स्थायी समिति ने कर लिया है। आज ही काठमांडू में पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र को रोजगार सृजन और निवेश का मुख्य आधार बनाकर विकसित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में मौजूद दीर्घकालीन संभावनाओं का पूरा उपयोग नहीं करने के कारण राष्ट्र को उपेक्षित लाभ नहीं मिल सका है। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा है कि राजनीति में सदाचार नीति लागू करना आवश्यक है। काठमांडू में आज राष्ट्रीय सभा की विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सदाचार नीति से संबंधित तैयार किए गए अध्ययन प्रतिवेदन 2082 पर हुई चर्चा में अध्यक्ष दाहाल ने कहा कि राजनीति के क्षेत्र में सदाचार लागू न हो पाने की वर्तमान स्थिति में सदाचार नीति स्थापित करने की ओर सभी संबंधित पक्षों का ध्यान जाना चाहिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति की नवनिर्वाचित सभापति ईश्वरी देवी न्योपाने ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालय में आज आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सभामुख देवराज घिमिरे के समक्ष नवनिर्वाचित सभापति न्योपाने ने शपथ ली। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया की संसद ने एक बिल को मंजूरी दे दी है जिसके तहत स्कूलों में कक्षा के दौरान मोबाइल फोन और अन्य स्मार्ट डिवाइस के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया उन देशों की सूची में शुमार हो गया है जिन्होंने युवाओं में फोन की लत और पढ़ाई पर उनके असर को देखते हुए पाबंदी लगाई है। हालांकि दक्षिण कोरिया के अधिकांश स्कूलों में अपने यहां ये नियम पहले से लागू कर रखा है। ये प्रतिबंध दक्षिण कोरिया के नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत मार्च 2026 से लागू होगा। कुछ देशों जैसे फिनलैंड और फ्रांस ने सीमित पैमाने पर पाबंदी लगाई है और ये नियम केवल छोटे बच्चों के स्कूलों में लागू होता है। वहीं इटली, नीदरलैंड और चीन जैसे देशों ने सभी स्कूलों में फोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में सहभागी होने के लिए भाद्र 14 गते जाएंगे चीन भ्रमण पर। दौरे के दौरान लीपू लेक लिम्पिया धुरा सीमा मुद्दे पर चर्चा होने की सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग द्वारा जानकारी। सरकार ने सोशल मीडिया को 7 दिनों के भीतर पंजीकरण करने का आह्वान करने का किया निर्णय। निजामती विधेयक में सहसचिव पद के लिए 10% खुला प्रतिस्पर्धा रखने की बात पर राष्ट्रीय सभा विधान व्यवस्थापन समिति में बनी सहमति। और दक्षिण कोरिया में क्लासरूम में फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर लगी बैन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।